विक्रांत इस वक्त राहुल के साथ मौजूद था और वे लोग एक मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में विक्रांत ने राहुल को बताया कि उसने ईशानी को पकड़ने का काम एक पाकिस्तानी कैप्टन को सौंपा है। ईशानी के पकड़े जाने के बाद वे उसे पाकिस्तान आर्मी के हाथों अरेस्ट करवा देंगे। अंडरवर्ल्ड में होने की वजह से उनके टेररिस्ट और पाकिस्तान आर्मी में पहचान थी और उसी के दम पर वे ईशानी के जरिए रुद्राक्ष को ब्लैकमेल करना चाहते थे। रुद्राक्ष के पास कंपनी के 30% शेयर्स थे, जबकि बाकी 35% विक्रांत के पास और 20% राहुल के पास थे। 15% कंपनी के मिले जुले लोगों के पास थे। राहुल ने अपने शेयर संजना के नाम कर रखे थे ताकि रुद्राक्ष को अगर कंपनी को टेक ओवर करना हो तो उसे संजना से शादी करनी ही पड़े। उनका प्लान अच्छे से जा रहा था कि तभी अचानक विक्रांत के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और वहीं सेम नोटिफिकेशन मोक्ष के मोबाइल पर पहुंचा था। नोटिफिकेशन देखने के बाद विक्रांत गुस्से से पागल हो गया। वो चिल्लाकर बोला, ये लड़का आखिर खुद को समझता क्या है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतने सालों बाद इसे याद आया क्या कि ये मेरा बेटा है? विक्रांत को इस तरह गुस्से में देखकर राहुल और माया हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। माया ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, तुम इस तरह गुस्से में पागल क्यों हो रहे हो? क्योंकि सब लोगों ने मिलकर मुझे पागल बना दिया है, विक्रांत ने तेज आवाज में कहा। उसने तुरंत किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल कनेक्ट होते ही विक्रांत गुस्से से बोला, मोक्ष, तुम अपनी माँ के साथ गए थे, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी में से शेयर मांगने की? उधर मोक्ष भी हैरान था, क्योंकि सेम नोटिफिकेशन उसके पास आया था। उसने कभी विक्रांत की प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए विक्रांत पर केस नहीं किया था, फिर भी उसकी तरफ से केस फाइल हो गया था, ये जानकर वो हैरान था। मोक्ष इस बारे में रुद्राक्ष से पूछ पाता उससे पहले विक्रांत का कॉल आ गया था। मोक्ष ने सख्ती से कहा, मुझे आपकी उस काली कमाई में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। आपको भी जेल के पीछे जाना पड़ेगा और आपकी सारी प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट के पास जाएगी। हाँ तो प्रॉपर्टी क्लेम करने का केस हवा में हो रहा है, तुम थोड़ी ना कर रहे हो। चुपचाप ये केस वापस लो, वरना रुद्री को मैं जान से मार दूंगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, विक्रांत ने गुस्से में धमकी देते हुए कहा। विक्रांत की धमकी देने पर मोक्ष भी गुस्सा हो गया था। उसने बिना सोचे समझे जवाब में कहा, ओ रियली, तो अब आप हमारी जान लेंगे? चलिए मैं आपको खुली छूट देता हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए, अब तो मैं अपने कदम चाहकर भी पीछे नहीं लेने वाला। वैसे आपको बता दूं कि ये सब मैंने नहीं किया था, जरूर भाई का प्लान होगा, पर अब मैं उनके प्लान में साथ हूँ। विक्रांत आगे कुछ कहता उससे पहले मोक्ष ने कॉल काट दिया था। विक्रांत ने माया और राहुल की तरफ देखकर कहा, ये लड़का मुझे जीने नहीं दे रहा है, एक बार उस ईशानी का पता चल जाए फिर मैं बताता हूँ कि किसी को अपनी उंगलियों पर नचाना क्या होता है। आखिर हुआ क्या है, तुम हमें बताओगे? माया ने विक्रांत को घूरते हुए पूछा। मोक्ष ने रुद्राक्ष के जरिए मुझ पर लीगल एक्शन लिया है, उसके हिसाब से मोक्ष भी मेरा बेटा है तो उसे मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। मुझे पता है ये सब वो क्यों कर रहा है, मोक्ष के जरिए वो अपने शेयर्स बढ़ाना चाहता है। अगर कुछ परसेंट फी उसके पास मोक्ष के जरिए ज्यादा गया तो पावर ऑफ अटर्नी उसके पास होगी। मुझे पता है उसने बाकी लोगों को भी शेयर्स बेचने के लिए मना लिया होगा, विक्रांत ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। विक्रांत की पूरी बात बताने पर राहुल हंसते हुए बोला, मुझे लगा ही था कि वो कोई बच्चों जैसी चाल चलेगा और उसने वैसा ही किया। फिलहाल के लिए तुम कुछ मत करो, अगर तुमने गुस्से में कोई कदम उठाया उसका फायदा रुद्राक्ष को ही होगा। ऐसा करो कि इस केस को लड़ने के लिए एक अच्छा वकील ढूंढो। और मैं केस हार गया तो? विक्रांत ने सिर हिलाकर पूछा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम केस पर ध्यान दोगे तो रुद्राक्ष का ध्यान इधर उधर होगा, इस बीच तुम्हारा आदमी ईशानी को ढूंढ ही लेगा, राहुल ने जवाब दिया। विक्रांत को राहुल का आइडिया काफी सही लगा। वे लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक विक्रांत के मोबाइल पर एक मैसेज आया। वो कैप्टन अहद का मैसेज था जिसमें उसने ईशानी की फोटो भेजी थी। जब ईशानी ने घर के पास आकर बुरका निकाला था और वो घर के अंदर जा रही थी तब उसने ईशानी की फोटो क्लिक कर ली थी। कैप्टन अहद ने साथ में मैसेज भी लिखा था, पैसों के साथ तैयार रहिएगा खुराना साहब, आपका कीमती माल मुझे मिल गया है। अहद का मैसेज मिलते ही विक्रांत के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने बिना कहे मोबाइल की स्क्रीन राहुल और माया की तरफ कर दी, जिसे देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तस्वीर देखने के बाद राहुल ने विक्रांत की तरफ देखकर कहा, लो हो गया तुम्हारा काम, और तुम बेवजह इतना गुस्सा करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। हाँ, अब तो लगता है कि मैंने सही आदमी को सही काम दिया था, चलो रुद्राक्ष से एक मीटिंग फिक्स करते हैं, विक्रांत ने जवाब दिया और फिर तुरंत वो फोटोज रुद्राक्ष को भेज दी थी। मोबाइल बंद होने की वजह से रुद्राक्ष उन मैसेज को चेक नहीं कर पाया, तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अहद पूरी तरह से चौकन्ना होकर जैन के घर के बाहर आर्मी के आने का इंतजार कर रहा था। उन सबसे बेखबर ईशानी और जन्नत घर के अंदर आ गई थी। घर आते ही ईशानी ने मुस्कुराते हुए जन्नत से कहा, थैंक यू सो मच इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, अब पता चल रहा है कि मैं तो बेवजह ही घबरा रही थी और ठीक से एंजॉय नहीं कर पाई। अगर तुम कहो तो हम वापस मेले में चलते हैं, मेला शाम तक वहां से कहीं नहीं जाएगा, जन्नत ने झट से कहा, जिस पर ईशानी ने तुरंत नामे सिर हिला दिया। ना बाबा ना, अब मुझे कोई मुसीबत मोल नहीं लेनी, सबसे पहले तो मैं इसे निकाल कर आती हूँ, इसमें तो मेरा दम ही घुट गया था, ईशानी ने जवाब दिया और जल्दी से अंदर चेंज करने के लिए चली गई।
कैप्टन अहद बेसब्री से जैन के घर के आगे खड़े होकर पाकिस्तान आर्मी का आने का इंतजार कर रहे थे, जो कि आधे रास्ते पहुंच चुके थे।